भजन का अनुवाद। हे वैष्णव गोसाई, कृपा मुझ पर इस बार करुणा करो। आपके बिना पतित जीवों को पावन करने वाला और कौन है? ऐसा परम दयालु कोई कहाँ प्राप्त कर सकेगा जिसके निकट जाने मात्र से पाप दूर चले जाते हैं। गंगा जल में अनेकों बार स्नान करने के बाद ही कोई शुद्ध हो पाता है, किंतु आपके तो केवल दर्शन करने मात्र से पतित जीवात्माएं पवित्र हो जाती हैं। यही आपका महान गुण है। भगवान श्री हरि के प्रति किए गए अपराधों से मुक्ति हरिनाम के द्वारा मिलती है, किंतु यदि कोई आपके चरणों में अपराध करे तो उस अपराध से कदापि ही निस्तार संभव नहीं। आपके हृदय में भगवान गोविंद सदैव विराजमान होते हैं और भगवान गोविंद कहते हैं, वैष्णवगण मेरे प्राण हैं। अतः मैं जन जन्मांतरों में आपकी चरण धूलि की कामना करता हूँ। कृपया नरोत्तम दास को अपना समझकर कृपा कीजिए। हरे कृष्ण। तो जब मेरे को पता लगा, मेरे को मैसेज आया सर्वे के दांत हुआ कि मेरे को आज क्लास लेना है, तो मैं हमेशा की तरह रिलक्टेंट था क्लास लेने के लिए। बट फिर मैंने देखा कि आज गदाधर पंडित का आविर्भाव दिवस है, तो मेरे को जिसके प्रेमानंदपुर ने 2 साल पहले क्लास लिया था, तो उन्होंने गदाधर पंडित पे तो उन्होंने एक चीज़ शेयर की थी, तो मेरे को वो चीज़ याद आई। उन्होंने बताया था कि जब हम आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली जब प्रिपेयर करते हैं, तो उससे हम अपनी कॉन्शियसनेस में उनको हम ला पाते हैं और उनके बारे में स्मरण कर पाते हैं। तो हमारे लिए एटलीस्ट बेनिफिट हो जाता है, औरों के लिए हो या ना हो पता नहीं। तो मैं इसी थॉट से मैं सोचा कि अच्छा मौका है गदाधर पंडित के बारे में स्मरण करने का, तो मैंने ये टास्क लेने को रेडी हुआ। बट जितना मैं जब जब मैं पढ़ना शुरू किया गदाधर पंडित के बारे में, जितना ज़्यादा पढ़ रहा उतना ज़्यादा और अपने आप को इनकम्पिटेंट समझ रहा मैं कि गदाधर पंडित के बारे में, क्योंकि जब मैं जितना जान रहा हूँ उनके बारे में, तो मुझे लग रहा था कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एक बद जीव जो काम क्रोध लोभ मोह से पूरा भरा हुआ है, वो एक भगवान के नित्य पार्षद, भगवान के नित्य संगी, उनके बारे में कुछ भी चर्चा भी कर सके तो बहुत मुश्किल है। बट मैं अपने शुद्धिकरण के लिए और सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए करने का प्रयास करूँगा, तो इसके लिए मुझे सभी भक्तों की आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं कुछ बोल सकूं, और कुछ मेरे से अगर त्रुटि हो जाए तो कृपा करके मुझे करेक्ट कीजिएगा। हरे कृष्ण। तो आज बहुत शुभ दिन है, आज गदाधर पंडित का आविर्भाव दिवस है। भगवान कृष्ण जब भी अवतार लेते हैं इस धराधाम पे, तो भगवान कभी भी अकेले नहीं आते। प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि जब कोई राजा किसी जगह जाता है तो वो कभी अकेला नहीं जाता, उसका पूरा काफिला उसके साथ जाता है। जैसे भी कोई बता रहा था कि कोई मिडल ईस्ट से कोई प्रिंस यहाँ पे आया भारत में, तो खूब सारा कई टन सामान अपने साथ में लेके आया, अपने गाड़ी अपना सब, अपने सिपाही वगैरह सब साथ में लेके आते हैं। तो जब भगवान भी आते हैं धरा धाम पे, तो वो अकेले कैसे आ सकते हैं? तो वो हमेशा अपने पार्षदों के साथ, अपने संगियों के साथ में आते हैं। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं आने, अब चैतन्य महाप्रभु भी आए, तो वो भी अपने पार्षदों के साथ आए। श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांग पार्षद, अपने पार्षदों के साथ में आए। और उनके पार्षद कौन थे? यही पंच तत्व मुख्य पार्षद, और बहुत सारे पार्षद, अनन्य उनके पार्षद थे जिनके बारे में हम सुनते हैं। तो हमें पढ़ते हैं, पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये पंच तत्व हैं, इसमें हैं पंच तत्व आत्मकम कृष्ण भक्त रूप, भक्त रूप वो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं, स्वरूपकम, स्वरूपकम है नित्यानंद प्रभु, भक्त अवतारम अद्वैत आचार्य, और भक्त आख्यम जो भक्त के रूप में है वह श्रीवास पंडित, और नमामि भक्त शक्तिकम, भक्त शक्ति हैं वो हैं गदाधर पंडित। तो उन्हीं गदाधर पंडित का आज आविर्भाव दिवस है और उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत की आदि लीला सातवें स्कंद के 17वें श्लोक में बताते हैं गदाधर पंडित के बारे में। ये श्लोक इस प्रकार है, गदाधर पंडितादि प्रभु शक्ति अवतार अंतरंग भक्त करी गण यहार। गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों को भगवान की अंतरंगा शक्ति का अवतार मानना चाहिए। वे भगवान की सेवा में लगे हुए अंतरंग भक्त हैं। तो प्रभुपाद यहाँ इसके तात्पर्य में बता रहे हैं, यहाँ अनुवाद में बताया गया कि जो गदाधर पंडित और बाकी जो भक्त हैं वो सब अंतरंग भक्त हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के। और प्रभुपाद इसके तात्पर्य में श्री भक्ति सिद्धांत सरोवर ठाकुर महाराज की अनुभाषित जो उनकी टीका है उससे कोट कर रहे हैं। और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि सारे शुद्ध भक्त, जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो सब भगवान की शक्ति तत्व और यानी कि भगवान की जो पोटेंसी है, जो भगवान की शक्ति जो तत्व हैं उसके पार्ट होते हैं। दे आर द शक्ति तत्व और द पोटेंसीज ऑफ द लॉर्ड, प्रभुपाद भक्ति से हमारा जो कोट करते बताते हैं। और इसी के अगले श्लोक में प्रभुपाद यहाँ पे भक्ति से महाराज कोट करते एक और चीज बताते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भक्ति सिद्धांत महाराज के कोट करते हुए दो कैटेगरीज बता रहे हैं, एक होते हैं शुद्ध भक्त यानी प्योर डिवोटीज और एक है इंटरनल डिवोटीज कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज। तो भक्ति सिद्धांत महाराज इनके इनमें थोड़ा सा कुछ भेद बता रहे हैं। प्योर डिवोटीज और इंटरनल डिवोटीज दोनों ही भगवान के कृष्ण की सेवा में लगे होते हैं और पूरी तरह कृष्ण भावनामित होते हैं, उनमें कोई भी ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं होता। उसके साथ में जो वो शुद्ध भक्त जो सिर्फ भगवान की माधुर्य रस में सेवा करते हैं, उनको श्री भक्ति सिद्धांत सरोवर ठाकुर महाराज बता रहे हैं वो भगवान के अंतरंग भक्त कहलाए जाते हैं। दे आर द इंटरनल डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो ये इंटरनल डिवोटीज में से एक हैं गदाधर पंडित। और श्री प्रभुपाद इसी चैतन्य चरितामृत में 10वें अध्याय में बता रहे हैं कि गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी भी हैं और वो ललिता सखी उनका अवतार भी हैं। तो दोनों माइंड बताया जाता है। तो उसी में आगे फिर क्या बताया है, अंतरंग भक्त या शक्ति समूह भगवान की लीलाओं में नित्य संगी होते हैं। भगवान केवल उन्हीं के साथ संकीर्तन आंदोलन के प्रसार हेतु अवतीर्ण होते हैं, उन्हीं के साथ वे मधुर रस का आस्वादन करते हैं और केवल उन्हीं के साथ वे जन सामान्य को इस भगवत प्रेम का वितरण करते हैं। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु जाते हैं भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण ने जब देखा कि श्रीमती राधा रानी इतना आस्वादन कर पा रही हैं वो मेरे भक्ति का, जो कृष्ण का इतना आस्वादन कर पा रही, तो वो भी बहुत हैरान हो गए कि उन्हें इतना कैसे टेस्ट आ रहा है, इतना रस मेरे को नहीं आ रहा, उन्हें कैसे आ रहा है, क्या स्पेशल है उनकी ऐसी भक्ति में श्रीमती राधा रानी के। तो उसको जानने के लिए भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने श्रीमती राधा रानी का जो भाव है उसको चुरा लिया और उसको चुरा के उसको यहाँ पे आए और उसका आस्वादन करने का प्रयास किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए लेकिन साथ में राधा रानी भी आई गदाधर पंडित के रूप में। वो किस लिए आई, वो आई ताकि श्री चैतन्य महाप्रभु को वो यानी कृष्ण को सिखा सकें कि कैसे उस भाव को आस्वादन करना है, क्योंकि वो उन्हीं की प्रॉपर्टी है, तो वही बताएंगे कि कैसे उसको आस्वादन करना है। तो इसलिए गदाधर पंडित भी उनके साथ में आए। और गदाधर पंडित को बताया जाता है कि जैसे गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी है, राधा रानी का महाभाव उनका है, प्रमुख है, और जो उनमें से वो महाभाव श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे चुरा लिया, तो गदाधर पंडित हैं राधा रानी जिनमें से वो महाभाव निकाल लिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, और इसलिए वो हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहते थे। गदाधर पंडित हमेशा प्रयास करते रहते थे कैसे उनको महाभाव वापस मिल सकता है। गदाधर पंडित का जो जन्म हुआ वो छठ ग्राम में हुआ, जो ईस्ट बंगाल में जो भी बांग्लादेश में जगह है वहाँ पे हुआ। उनके पिता का नाम था माधव मिश्र और उनकी माता का नाम था रत्नावती देवी। उनके जन्म के कुछ समय बाद माधव मिश्र और रत्नावती देवी वो ईस्ट बंगाल से मायापुर नवदीप वहाँ पे शिफ्ट हो गए और वो रहने लगे उस जगह जहाँ पे जगन्नाथ मिश्र छची माता भी रहते थे, उसी के पास में रहने लगे। क्योंकि ये भी मिश्र ब्राह्मण थे और वो भी मिश्र ब्राह्मण थे, दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती थी, बहुत अच्छा संगीत है। तो जगन्नाथ मिश्र और माधव मिश्र बहुत से मित्र थे, और रत्नावली देवी और सची माता वो भी बहुत अच्छे मित्र थे आपस में। तो इसीलिए गदाधर पंडित और श्री चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई पंडित, वो भी बहुत अच्छा उनका मित्रता थी। वो हमेशा एक दूसरे के साथ में रहते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक दूसरे के साथ में खाते थे। और गदाधर पंडित को निमाई पंडित का संग बहुत अच्छा लगता था। गदाधर पंडित का जन्म भी निमाई पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के एक साल बाद ही हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु भी 48 ईयर्स रहे इस धराधाम पे, और गदाधर पंडित भी 48 ईयर्स रहे, उसको एक साल बाद उन्होंने इस लीला को समाप्त किया। तो गदाधर पंडित बहुत पसंद करते थे निमाय पंडित का संग लेना, श्री चैतन्य महाप्रभु का संग लेना। लेकिन उनको बहुत चुभता था ये देख के कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित जब वो अपना जब व्यवहार प्रकट कर रहे थे एक स्कॉलरली ब्राह्मण होने का, एक बहुत प्रखांड पंडित होने का, निमाय पंडित उस समय बहुत उदंड और बहुत नटखट बालक थे। वो हर किसी को परेशान करके रखते थे पूरे नदिया के अंदर, किसी को भी, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, वो किसी को भी पकड़ लेते थे रास्ते में और पकड़ के उनसे शास्त्रार्थ करते थे। तो गदाधर पंडित उनसे हमेशा बच के भागते थे। एक बार निमाय पंडित ने उनको पकड़ लिया और उनको बोला, तुम हमेशा मेरे से कहाँ छुपते रहते हो? तो गदाधर पंडित वो अपने, दोनों एक ही स्कूल में थे, गदाधर पंडित पढ़ते थे न्याय और निमाय पंडित पढ़ते थे व्याकरण। तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा, तुम न्याय पढ़ते हो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला, ठीक है, ये तो व्याकरण पढ़ते हैं, इसी के बताओ न्याय के बारे में, तो ठीक है पूछ लो। तो उन्होंने बोला कि आप बताओ कि मुक्ति का मतलब क्या है, मुक्ति की क्या परिभाषा है? गदाधर पंडित ने कहा, मुक्ति की परिभाषा है अत्यंतिक दुख निवृत्ति। तो निमाय पंडित ने कहा, नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, तुम ठीक से पढ़ के नहीं आए, घर जाओ, कल से फिर से ठीक से पढ़ के आना। तो गदाधर पंडित को बहुत बुरा लगा। तो और उन्होंने फिर निमाय पंडित ने सब अपने उनके स्टूडेंट्स के सामने उनको पूरा डिफीट कर दिया गदाधर पंडित को। गदाधर पंडित को बहुत बुरा भी लगा लेकिन अच्छा भी लगा, और वो मन ही मन सोच रहे थे कि अगर ये निमाय पंडित अगर ये भक्त बन जाए तो कितना अच्छा होगा, इतना सुंदर है, इतना अच्छा, ये इतना अच्छा बोलता है, लेकिन ये अगर भक्त बन जाए तो बहुत अच्छा हो पाएगा। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित जो अंतर्यामी हैं वो समझ पाए उनके हृदय की बात, और उन्होंने उनको बोला कि देखो एक दिन गदाधर पंडित मैं एक ऐसा भक्त बनूंगा कि ब्रह्मा और शिवा तक भी मेरे दरवाजे पे आएंगे और मेरे को प्रणाम करेंगे। गदाधर पंडित ने कहा, ये कैसे बात कर रहा है? तो ऐसे करके उनका पूरा बचपन में रहे। तो गदाधर पंडित, निमाय पंडित और जगदानंद, ये तीनों बहुत से मित्र थे, तीनों साथ में खेलते थे। तो एक बार ये खेलते खेलते गए एक वन के अंदर, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम तोते को पकड़ेंगे, तोता जो होता है उसको पकड़ेंगे। तो गदाधर पंडित और जगदानंद ने खुद प्रयास किया उस तोते को पकड़ने का, लेकिन उनके हाथ में नहीं आया। फिर निमाय पंडित ने, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा उस तोते को और उसको बोला कि तुम व्यासदेव के पुत्र हो, तुम राधा कृष्ण को जपो, राधा कृष्ण का नाम लो। जब उनको ऐसा बोला उस तोते को, तो वो तोता बोलने लगा, गदाई गौर गदाई गौर गदाई गौर। तो निमाय पंडित ने सुना, कहा अरे क्या बोल रहे हो तुम, ये तुमको मैंने बोला राधा कृष्ण का नाम लेने को, तुम ये क्या जप रहे हो? तो उस तोते ने कहा कि एक्चुअली क्या है कि अब जो वृंदावन है, जो नवदीप है, वो वृंदावन बन गया, और ये जो कृष्ण थे वो कौन है, वो आप स्वयं हैं, और ये राधा रानी वो ये गदाधर है, तो इसलिए मैं गदाई गौर का नाम ले रहा हूँ। तो महाप्रभु ने उसको भगा दिया, तुम भाग जाओ यहाँ से, और चले गए वहाँ से। हम देखते हैं कि जैसे गौर गणोदय दीपिका में भी कवि कर्णपूर्ण बताते हैं कि व्रज लीला में गदाधर पंडित हैं, वो वृषभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी स्वयं हैं। तो नवदीप में ही एक बार ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु थे, तो ईश्वरपुरी उनके दीक्षा लेने से पहले वो नवदीप में आए, और नवदीप में आए तो वो गोपीनाथ आचार्य के घर पे रहने लगे। तो उनका गदाधर पंडित से उनका संग हुआ, और उस समय ईश्वर पूरी कृष्ण लीलामृत ग्रंथ का रचना कर रहे थे, तो उन्होंने अपना पूरा ग्रंथ, गदाधर पंडित को इतना प्रसन्न हुए उनके स्वभाव से कि पूरा अपना ग्रंथ उनको सिखा दिया उन्होंने गदाधर पंडित को। तो गदाधर पंडित एक बार ईश्वरपुरी को लेके जा रहे थे नवद्वीप में, तो उन्होंने तो नित्यानंद प्रभु वहाँ पे बैठे अपने संगियों के साथ बैठे हुए थे, वार्तालाप कर रहे थे। तो ईश्वरपुरी ने बताया कि मैं आपसे आपको मिलवाना चाहता हूँ हमारे इस गांव के एक बहुत प्रखंड पंडित से, इनका नाम है निमाय पंडित। तो वो उनको लेके गए और उनको उनसे मिलवाया, और शायद पहली बार ही निमाय पंडित बहुत हम्बल होके, बहुत विनम्र होकर उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो जो पहली भेंट ईश्वरपुरी की कराई थी चैतन्य महाप्रभु से, वो गदाधर पंडित ने ही कराई थी। तो कुछ समय बाद जब जगन्नाथ मिश्र का तिरुभाव हुआ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित उनके श्राद्ध के लिए गया गए, और गया में उनको ईश्वरपुरी से भेंट हुआ, उनसे उन्होंने दीक्षा लिया, उनसे हरिनाम प्राप्त किया। और फिर वहाँ से जब वापस आए, जय श्री श्री राधा राधिका हनुमान की, कृष्ण बलराम की, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, जगत गुरु शुक्रो, तो उन्होंने वहाँ से दीक्षा लेके वहाँ से वापस आ रहे हैं। लेकिन जब वापस आ रहे हैं तो निमाय पंडित एकदम बदल चुके थे। अब वो वैसे स्कॉलरली ब्राह्मण, वैसे प्रखंड पंडित के का रोल नहीं कर रहे थे, अब वो एकदम पूरी तरह से विनम्र हो गए थे, और हमेशा हमेशा कृष्ण भावना में, कृष्ण के विरह में उनका उसी भाव में आस्वादी रहते थे, हमेशा उसी भाव में रहते थे और उसी विरह में वो रहते थे। तो जब जा रहे थे, जब वो वापस आ रहे थे नवद्वीप में, तो उनको एक पेड़ दिखा, और उस पेड़ में उन्होंने किसको देखा, स्वयं श्री कृष्ण को देखा, और श्री कृष्ण ने उनको उनका आलिंगन कर लिया, और फिर डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। जब ऐसा एक्सपीरियंस किया निमाय पंडित ने, तो एकदम वो पागल हो गए, और बस कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वो बस कृष्ण के विरह में ही हमेशा उसी एक्सटेसी में रहते थे। जब वो पहुंचे नवद्वीप में, तो हमेशा कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी कृष्ण को बोल के खूब चिल्लाते रहते थे। तो शची माता उनको देख के बहुत परेशान हो जाती थी कि क्या हो रहा है। तो एक बार ऐसे ही वो बैठे थे और खूब विनय कर रहे थे कृष्ण के लिए, तो गदाधर पंडित ने उन्हें बोला कि तुम क्यों विनय कर रहे हो कृष्ण के लिए, कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में है, तो तुम्हें जरूरत नहीं है उनके लिए विनय करने के लिए। जब ये सुना श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित ने, तो उन्होंने अपना जो हृदय है, अपना जो छाती है, उसको नाखून से छीलने लगे कि मैं कृष्ण को देखना चाहता हूँ, कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। जब ये देखा गदाधर पंडित ने, उनको रोका, नहीं नहीं नहीं, आप पेशेंस, आप धैर्य रखिए, अगर आप धैर्य रखेंगे तो कृष्ण आपका दर्शन देंगे। तो फिर वो थोड़ा पैसिफाई हुए श्री चैतन्य महाप्रभु, शांत हुए और वो रुके। जब शची माता ने ये देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि वो जब से निमाय पंडित, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे गया से, तो ऐसे सिम्टम्स दिखा रहे थे कि शची माता बहुत परेशान हो रही थी कि इसका कैसे होगा, कुछ इसको हो ना जाए। लेकिन जब देखा कि गदाधर पंडित ने इतने सुंदर तरीके से उनको पैसिफाई कर दिया, तो वो बहुत प्रसन्न हुई, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया गदाधर पंडित से कि आप हमेशा इसके साथ में रहिए, कभी इसका संग ना छोड़े। तो इसलिए गदाधर पंडित हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहते थे, उन्हीं के साथ खाते थे, उन्हीं के साथ सोते थे, उन्हीं के साथ खेलते थे, हमेशा उनके साथ में रहते थे। तो कुछ समय बाद जब महाप्रभु ने डिसाइड किया कि अब मेरे को संन्यास लेना पड़ेगा, तो उन्होंने फिर डिसाइड किया संन्यास लेने का, उन्होंने शेयर किया गदाधर पंडित से कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो गदाधर पंडित ने उन्हें पहले रोका, तुम क्यों संन्यास ले रहे हो, हमारी एक बूढ़ी माँ है, शची माता है, आपकी एक जवान एक पत्नी है अभी, तो क्या जरूरत है संन्यास लेने की। लेकिन फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया कि मैं किस लिए आया हूँ, मेरे को क्या करना है, इस हरिनाम का प्रचार करना है। तो फिर गदाधर पंडित ने समझाया और महाप्रभु ने फिर संन्यास लिया, और फिर गदाधर पंडित ने भी डिसाइड किया मैं भी महाप्रभु को फॉलो करूँगा। उससे पहले एक लीला आती है कि कैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु खूब संकीर्तन कर रहे थे अपने भक्तों के साथ, और संकीर्तन करते करते वो खूब तेज चिल्लाने लगे, हाँ पुंडरीक पुंडरीक पुंडरीक। तो सब भक्त एकदम परेशान हो गए कि पुंडरीक कौन है, उनको लगा शायद कृष्ण का नाम पुंडरीक है, हो सकता है पुंडरीक कृष्ण को बुला रहे हो। लेकिन जब उन्होंने बोला पुंडरीक विद्यानिधि, तब वो लगा कि ये तो कोई भक्त होंगे, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु उनको गुणगान करने लगे पुंडरीक विद्यानिधि का। और जब उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि का गुणगान करने लगे कि वो कैसे गंगा माता की सेवा में हमेशा तत्पर लगे रहते हैं इतने प्रेम से, और महाप्रभु ने ये डिजायर उत्पन्न करी, ये डिजायर इच्छा करी कि मैं गुंडरीक विद्यानिधि का संग करना चाहता हूँ, उनका संग मिल सके मेरे को। तो महाप्रभु की इच्छा होगी तो ऑब्वियसली वो होना ही था। तो कुछ समय बाद पुंडरीक विद्यानिधि नवदीप में आके सेटल करते हैं, वहां पर रहना शुरू करते हैं। तो मुकुंद जो थे, मुकुंद एक बार गदाधर पंडित को लेके गए कि आओ तुमको, तुमको बहुत, तुमको रुचि है अलग अलग वैष्णवों से मिलने में, अलग अलग वैष्णवों से का दर्शन करने के लिए, और तुमको एक परम वैष्णव से मिलवाता हूँ मैं। तो वो उनको लेके गए पुंडरीक विद्यानिधि के पास। तो जब अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा कि पुंडरीक विद्यानिधि एक बहुत सुंदर से सॉफ्ट से बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर सिल्क का पूरा बेड है वो, और वो मुंह में कुछ पान चबा रहे हैं, और उनके आसपास कुछ उनके सेवक हैं, उनको चामर कर रहे हैं, खूब सुगंधित इत्र सेंट उन्होंने आसपास लगे हुए हैं, उनकी बॉडी में पूरे तेल लगे हुए हैं, और ऐसे ऑपुलेंस में, ऐसे ऐश्वर्य में वो बैठे हुए हैं, और ऐसे ऐश्वर्य में हैं वो। तो गदाधर पंडित को जब देखा तो थोड़ा उनको थोड़ा डाउट होने लगा कि ये मुकुंद तो मेरे को कह रहा था कि मैं किसी परम वैष्णव के पास लेके आऊँगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। तो उनके मन में थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि मुकुंद गदाधर पंडित के मित्र थे, उनको जानते थे, तो समझ गए कि उनके मन में डाउट हो रहा है। और उसी समय मुकुंद ने क्या किया, भगवान कृष्ण का गुणगान करना शुरू किया, और स्पेशली उन्होंने ये श्लोक तीसरे स्कंध का उच्चारण किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जघाम सयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिमुचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा। उन्होंने बोला कि जो श्लोक ये बताता है, बता रहे हैं कि कितने क्या कितना आश्चर्यजनक है कि पूतना जो कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों में जहर लगा के आई, उस राक्षसी को भी भगवान ने क्या किया, एक धात्री, एक नर्स का पोजीशन दे दिया, अपनी मदर का पोजीशन दे दिया उसको। तो ऐसे कृपालु, ऐसे जो दयालु जो कृष्ण है, उनकी कौन शरण नहीं लेना चाहेगा। तो जब ये सुना पुंडरीक विद्यानिधि ने, तो वैसे भावावेश में आ गए कि सब कुछ भूल गए कि वो कहाँ हैं, किस पोजीशन में हैं। वो सारे अपने जो ऑपलेंस की चीज़ें थी उन सबको उन्होंने फेंक दिया, सारी जो वहाँ पे बोतलें पड़ी थी, सारा जितना बेड का जितना कवर थे सबको इधर उधर कर दिया, सबको फाड़ने लगे, अपने कपड़े फाड़ने लगे, और खूब भावावेश में वो आ गए, और भावावेश में वो रोने लगे और ज़मीन पर रोल करने लगे। जब गदाधर पंडित ने जब देखा ये, तो वो उनको लगा कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, कि सही में तो ये एक महाभागवत है, और उनको बहुत ग्लानि हुआ कि मैंने ऐसे क्यों जज किया। हम भी कई बार देखते हैं कि हम एक्सटर्नल से कई बार एक्सटर्नल बहुत डिसेप्टिव हो जाते हैं। हम कई बार किसी भक्त को एक्सटर्नल रूप से देखते हैं कि ये भक्त ऐसे एक्ट कर रहा है या फिर ऐसा है वो, तो हम उसको लगता है कि ये भक्त बहुत ख़राब भक्त है या फिर ऐसा है, ये सही नहीं है। बट जैसे हम देखते हैं इस पास्ट टाइम के माध्यम से हमको सीखने को मिलता है कि कैसे कि किसी भक्त का क्या स्थिति है, उसे क्या कारण है, उसके पीछे हम नहीं जान सकते। तो जब गदाधर पंडित को ये पता लगा तो उन्होंने बहुत दुख हुआ, और उन्होंने डिसाइड किया कि इसका एकमात्र प्रायश्चित है कि मैं पुंडरीक विद्यानिधि से अब दीक्षा लूँगा। तो उन्होंने मुकुंद को ये बताया, मुकुंद से उन्होंने शेयर किया, और फिर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को भी बताया। चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना तो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा, तो वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत खुशी हुई कि गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेना चाहते हैं। और पुंडरीक विद्यानिधि, बताया जाता है कि वो स्वयं वृषभानु जी जो राधा रानी के जो पिता हैं उनके अवतार हैं, तो एकदम सही था उनका उनसे दीक्षा लेना। तो जब गदाधर पंडित ने चैतन्य पुंडरीक विद्यानिधि से मंत्र लिया, दीक्षा ली, तो एक बार गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं जो अपना मंत्र है, जो मेरा दीक्षा का मंत्र है, उसको भूल रहा हूँ, मेरे को वो स्मरण नहीं आ रहा मंत्र, तो कृपा करके आप मेरे को बताइए, मैं ठीक से वो मंत्र को जाप नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरे को बताइए मंत्र क्या है, मेरे कान में फिर से बताइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो आपके गुरु ने आपको दिया, वो गुरु ही बता सकते हैं आपके, मैं नहीं बता सकता। तो गदाधर पंडित ने कहा, आप तो आदि गुरु हैं, आप सबके गुरु हैं, तो आप अगर बता देंगे तो मैं फिर से इसको जप कर पाऊंगा। तो महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं अगर आपकी इच्छा स्ट्रांग है आपने गुरु का स्मरण करो तो वो प्रकट हो जाएंगे और वो आपको बताएंगे। और ऐसा ही हुआ, गदाधर पंडित ने स्मरण किया पंडित विद्यानिधि का और वो वहीं पे आ गए और उन्होंने उनको फिर ये वापस उनका मंत्र बताया। तो संन्यास लेने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और शची माता से ने उनको बोला कि आप जाइए जगन्नाथपुरी में, आप वहाँ पर सेटल करिए ताकि मेरे को आपकी खबर मिलती रहेगी आपके बारे में, मैं जो भक्त आएंगे रथ यात्रा के लिए जाएंगे और वापस आएंगे तो मैं उनसे उनसे आपके बारे में जान पाऊंगी, तो आप इसलिए जगन्नाथपुरी में रहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे और क्योंकि गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के बिना नहीं रह सकते तो कुछ समय बाद गदाधर पंडित भी वो भी चले गए जगन्नाथपुरी। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु को पता लगा कि गदाधर पंडित जगन्नाथपुरी आ गए हैं तो उन्होंने उनको उनका स्वागत किया, उनको आलिंगन किया और उनको रहने को दिया। उन्होंने उनको भेजा जम्बेश्वर महादेव के पास, एक जगह थी जहाँ पे एक बहुत सुंदर बाग था टोटा जो जगह थी वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने उनको भेजा, उनको बोला था आप वहीं पे रहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु का रोज का ये शेड्यूल था कि रोज सुबह वो जाते थे जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, जगन्नाथ जी के दर्शन करके वहाँ से महाप्रसाद जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके हरिदास ठाकुर के पास जाते थे और हरिदास ठाकुर को महाप्रसाद देके वो फिर वहाँ उनके साथ कृष्ण के चर्चा करते थे और वहाँ से जाते थे समुद्र में समुद्र स्नान करने और समुद्र स्नान करके आते हैं सीधा गदाधर पंडित के पास और गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम सुनते थे। और श्रीमद् भागवतम में भी स्पेशली वो ध्रुव महाराज के पास टाइम सुनते थे, बार बार वो ध्रुव महाराज के पास टाइम सुनते थे, उनको इतना रुचि था इसमें। और गदाधर पंडित का इतना टेस्ट था श्रीमद् भागवतम के अंदर कि वो जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे तो उनकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते थे और इतना क्रंदन करते थे श्रीमद् भागवतम पढ़ते पढ़ते कि जो पूरी भागवतम है वो पूरी मिट जाती थी, उसकी पूरी इंक पूरी मिट जाती थी उनकी आंसुओं से। ये गदाधर पंडित का टेस्ट होता है। मैं भी सोच रहा कि मेरा भी जब मैं भागवतम पढ़ता हूँ तो मेरे को भी कई बार आंसू आते हैं लेकिन वो नींद वाले होते हैं तो हमको नींद आती है, इतना मुश्किल होता है भागवतम को ठीक से पढ़ने के लिए मेरे को, बट गदाधर पंडित का इतना टेस्ट था और वो बार बार भागवतम को पढ़ते रहते थे और इसलिए बार श्री चैतन्य महाप्रभु रोज उनके पास जाते थे और उनसे श्रीमद् भागवतम सुनते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु वहीं पे गोपीनाथ टोटा उस जगह में थे और वहाँ पे उन्होंने एक पर्वत देखा, एक सैंड ड्यून, एक रेत का टीला देखा और उसको देख के वो और देखा और वहाँ पे देखा एक बरगद का पेड़ देखा। और तो जब उन्होंने वो रेत के टीले को देखा तो उन्होंने कहा ये तो गोवर्धन है और जब उस पेड़ को देखा तो उन्होंने कहा ये वंशीवट है, तो जहाँ गोवर्धन है वंशीवट है तो कृष्ण भी होंगे। तो वो भागने लगे वहाँ पे कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, और भाग के वो भागने लगे और फिर वहाँ पे उस रेत के टीले में वहाँ पे खोदने लगे अपने हाथों से कि कृष्ण कहाँ है कृष्ण कहाँ है। सब भक्तों ने देखा तो सब भक्त एकदम परेशान हो गए कि महाप्रभु क्या कर रहे हैं, और भाग के गए सब भक्त चैतन्य महाप्रभु के पास उनको रोकने के लिए। चैतन्य महाप्रभु खोदते खोदते महाप्रभु ने एक चीज निकाली, उन्होंने बोला गदाधर पंडित को मैं तुमको अगर कोई चीज दूंगा क्या तुम उसको संभाल के रखोगे। तो गदाधर पंडित ने कहा कि अगर मैं आप कोई चीज दें और उसको मैं कैसे ना संभालूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां से वो एक मुकुट निकाला और मुकुट निकाल के दिया, तो सब भक्तों ने देखा, सब बहुत हैरान हुए। फिर सब भक्तों ने मिलकर उस जगह की खुदाई कराई और वहां पर उनको मिले गोपीनाथ जी के विग्रह जो हम देखते हैं अभी टोटा गोपीनाथ में जो बिक रहे हैं। और सिर्फ गोपीनाथ नहीं थे, उसके साथ में थे ललिता सखी और श्रीमती राधा रानी और ये बहुत स्पेशल विग्रह थे। अगर हम दर्शन करें इनका, जैसे अगर 2 साल पहले हनुमान जी उन्होंने क्लास लिया था, उन्होंने फोटो भी दिखाई थी बहुत सुंदर उन सबका, मैं सोच रहा कि फोटो दिखानी चाहिए। तो जब वो विग्रह देखते हैं तो बहुत सुंदर विग्रह हैं उसमें, उसमें भगवान कृष्ण हैं टोटा गोपीनाथ के रूप में और साथ में ललिता सखी है और राधा रानी है। और ललिता सखी और राधा रानी का जो कांति है वो कैसी है, कृष्ण की कांति है, यानी वो कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। तो बताते हैं बहुत स्पेशल विग्रह हैं। जब भगवान कृष्ण रास कर रहे थे सब गोपियों के साथ, तो हम जैसे पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में कि रास में कर रहे थे तो एकदम से भगवान वहां से गायब हो गए और सारी गोपियां एकदम भगवान के विरह में एकदम परेशान हो गई, एकदम पागल के समान हो गई। वो कृष्ण को ढूंढ रही थी, कृष्ण का स्मरण कर रही थी, कृष्ण की लीलाओं का चर्चा कर रही थी और कृष्ण के स्मरण में इतना ज्यादा वो एब्जॉर्ब हो गई थी कि वो कृष्ण की लीलाओं को इनैक्ट करने लग गई, कृष्ण की लीला वो को करने लग गई। कोई कोई जो गोपी थी वो पूतना बन रही थी और दूसरी गोपी एक बाल कृष्ण के रूप में उनके जो स्तन है उनका पान कर रहे थे। तो अलग अलग कोई कोई जो गोपी है वो कालिया बन रही है और कृष्ण उनके सर पर नृत्य कर रहे हैं, ऐसे करके वो अलग अलग लीलाओं को कर रहे थे, एकदम कृष्ण के मूड में आ गए थे। तो उसी मूड में ये विग्रह हैं जिसमें छोटा गोपीनाथ है और राधा श्रीमती राधा रानी और ललिता सखी, वो भी कृष्ण की कांति को उन्होंने अपनाया हुआ है। उनकी कांति स्वर्ण कांति नहीं है बट उनकी कृष्ण की श्याम कांति में है, ब्लैक देखते हैं उनका कलर के। तो ये बहुत स्पेशल विग्रह उन्होंने निकले और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि अब आप इनकी टेक केयर करो, आप इनका ध्यान रखो, इन विग्रहों का आप सेवा करो। तो कुछ समय बाद फिर श्री चैतन्य महाप्रभु वहीं पे थे जगन्नाथपुरी और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि अब मेरे को वृंदावन जाना है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु पहले भी ट्राई कर रहे थे पर पहले हम जैसे जानते हैं जब वो संन्यास लेने के बाद वो जाना चाहते हैं वृंदावन, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको डिसीव कर दिया और उनको वृंदावन की जगह शांतिपुर ले गए और उनका दंड भी तोड़ दिया। तो वो पास टाइम आता है फिर चैतन्य महाप्रभु नहीं जा पाए। इस बार उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि अब मैं वृंदावन जाऊँगा और जब उन्होंने डिसाइड किया वृंदावन जाने का तो बहुत सुंदर पास टाइम आता है चैतन्य चरितामृत में कि कैसे भगवान जब जाने का प्रयास करते हैं वृंदावन तो सारे के सारे भक्त भगवान को पेक के पीछे चलने लग जाते हैं कि हम भी आपके साथ जाएंगे और गदाधर पंडित भी उनके साथ जाते हैं। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में अध्याय 16 में इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है कि महाप्रभु के साथ साथ परमानंद पुरी गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, जगदानंद, मुकुंद, गोविंद, काशीश्वर, हरिदास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, गोपीनाथाचार्य, दामोदर पंडित, रमाई, नंदाई तथा अन्य अनेक भक्त थे। इनमें से मुख्यों के नाम मैंने गिनाए हैं, श्री कवि कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, पूरी संख्या बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो इतने सब भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने लग गए, श्री कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि कोई भी नहीं बता सकता कि उनकी संख्या कितनी थी। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा उनको साथ में सब आ रहे हैं तो काफी समय तक तो वो आगे साथ में आए और कटक तक वो सब लोग साथ में आए। तो उसके बाद लेकिन फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अब ज्यादा आगे तो नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला गदाधर पंडित को, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा गदाधर पंडित अबे संगे ते चलीला, क्षेत्र संन्यास ना छाड़िया प्रभु निषेधिला। जब गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ जाने को उद्यत हुए तो उन्हें मना कर दिया गया और कहा गया कि वे क्षेत्र संन्यास व्रत का परित्याग ना करें। गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास ले लिया है, उन्होंने कहा कि जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में रह रहे हैं तो मैं क्यों जाऊँगा कहीं बाहर, मैं यहीं रहूँगा और मैं यहाँ क्षेत्र संन्यास लूंगा, इसके बाहर कहीं नहीं जाऊँगा। उन्होंने डिसाइड कर लिया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे, लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु चले गए जा रहे हैं वहाँ से तो उन्होंने कहा फिर मैं क्यों रहूँ यहीं पर, मैं भी जाऊँगा। तो महाप्रभु उनको रोकने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि आपने क्षेत्र संन्यास लिया, आप नहीं जा सकते यहाँ से, आप क्यों जा रहे हैं। तो श्री गदाधर पंडित ने कहा पंडित का हे यहाँ तुम्हें से नीला चल क्षेत्र संन्यास मोर आए रसातल। कि जब गदाधर पंडित ने लौट जाने के लिए कहा गया, जब गदाधर पंडित को लौट जाने के लिए कहा गया तो वे महाप्रभु से बोले आप जहाँ रहते हैं वही जगन्नाथपुरी है, मेरा तथाकथित क्षेत्र संन्यास नरक में जाए, वो बाहर में जाए क्षेत्र संन्यास, कोई फर्क को जरूरत नहीं है उसकी, जहां आप है मेरे लिए वहीं पे मिला चल। महाप्रभु ने कहा प्रभु कहे यहाँ कर गोविंद सेवा न, पंडित कहे कोटि सेवा तत्व पाद दर्शन। जब महाप्रभु ने कहा कि आप गोविंद की सेवा करो, आपको छोटा गोपीनाथ की सेवा करनी चाहिए, तो गदाधर पंडित ने कहा आपके चरण कमलों के दर्शन मात्र से गोविंद की करोड़ बार सेवा हो जाती है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है उनकी सेवा करने की। प्रभु का है सेवा छाड़ी भी आमाय लागे दोष, यहाँ रही सेवा कर आमार संतोष। महाप्रभु ने कहा कि आप यदि आप अपनी सेवा करना बंद कर देंगे तो यह मेरा दोष होगा, क्योंकि आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो दोष किसको लगेगा? मेरे को लगेगा। इसलिए अच्छा हुआ कि आप यहाँ रहकर सेवा कार्य करिए, इससे मुझे संतोष मिलेगा, मैं भी इसे सेटिस्फाई होऊंगा, मुझे दोष नहीं लगेगा, तो आप यहीं रहिए। लेकिन गदाधर पंडित ने कहा, पंडित का है सब दोष हमारा ऊपर, तोमा संगे ना याई बे याई बे एक शर। तो गदाधर पंडित ने कहा, मैं आपको दोष नहीं लगेगा, दोष मेरे को लगेगा, और वैसे भी मैं आपके साथ तो जा ही नहीं रहा, मैं तो अकेला जा रहा हूँ आपके साथ किसने कहा जा रहा हूँ? तो कहाँ जा रहे हो फिर आप? जतने हम रोज से पूछे कहाँ जा रहे हो फिर अगर वहां नहीं जा रहे तो कह रहे हैं कि आई के देखी बे आई बे ना आई बे तो मा लागी प्रतिज्ञा सेवा त्याग दोष तार आमी भागी। मैं सजी माता को मिलने जा रहा, मैं आपके साथ नहीं जा रहा, किंतु आपके कारण नहीं जाऊंगा, मैं गोपीनाथ की सेवा करने के अपने व्रत को भंग करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होऊंगा, मेरे को दोष लगेगा मैंने गोपीनाथ की सेवा नहीं करी, आपको थोड़ी कोई कुछ कह रहा है, और मैं वैसे भी सची माता के मिलने जा रहा हूँ, आपके साथ नहीं जा रहा। तो ऐसा कह के वो महाप्रभु के साथ चलने लगे, और फिर महाप्रभु ने उनको बुलाया, उनको अपने पास बिठाया, और उनको फिर महाप्रभु ने बोला। तो यहाँ पर चैतन्य कृष्णदास कविराज बहुत सुंदर बता रहे हैं, पंडित रघुरंग प्रेम भूजी नाया प्रतिज्ञा श्री कृष्ण सेवा छड़ी तृण प्राय। किसी चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित के बीच का प्रेम है उसको कोई नहीं समझ सकता। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि देखो तुम अपना जो क्षेत्र संन्यास है उसको त्याग करके जाना चाहते हो, लेकिन असली में तुम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हो सब, इससे मेरी संतुष्टि नहीं है, तो तुम ये सब कर रहे हो इससे मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, तो अगर तुम्हें मेरी प्रसन्नता चाहिए तुम यहीं पे वापस चले जाओ यहीं से और गोपीनाथ की सेवा करो। तो शुद्ध भक्त हम की एकमात्र इच्छा होती है कृष्ण की सेवा करना, उनकी अपनी इच्छा की कोई रुचि नहीं होती, कोई उनकी इच्छा नहीं होती। जब गदाधर पंडित ने ये सुना कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको और ऐसा नहीं जो भक्ति भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज बता रहे थे कि महाप्रभु ने शपथ दे दी उनको कि आपको शपथ है मेरी कि आप नहीं जा सकते इससे आगे। जब गदाधर पंडित ने ये सुना तो वो एकदम टूट गए और वहीं पे बेहोश हो गए, और लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ पीछे भी नहीं देखा और वो आगे चलते गए और चले गए, बट सार्वभौम भट्टाचार्य को भेज दिया, आप जाओ उनका ध्यान रखो। तो गदाधर पंडित पूरी तरह से एकदम बहुत दुख में थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने लेकिन उनको कंसोल किया, उनको उनको पैसिफाई किया, उनको बोला कि देखो चैतन्य महाप्रभु ने जो किया एकदम ठीक किया, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा ली है, भगवान ने गीता में बताया है कि कौन तेह प्रति जाना ही न मैं भक्तिया प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार है, अपने वचन तोड़ने को तैयार है, लेकिन अपने भक्त की जो दी गई प्रतिज्ञा है, अपने भक्त के दिए गए वचन है, उसे कभी झूठा नहीं होने देंगे। इसके लिए भगवान ने भीष्मदेव की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपना वचन तोड़ दिया, उन्होंने अस्त्र उठा लिए। तो इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे कि वो श्री गौरांग महाप्रभु नहीं चाहते कि आपका जो व्रत है कि आप क्षेत्र संन्यास का वो टूटे, तो इसलिए उन्होंने ये सब किया। तो जब ये सुना गदाधर पंडित ने तो वो बहुत उनको थोड़ा सांत्वना मिली और वो शांत हो गए। चैतन्य महाप्रभु लेकिन निकल गए आगे, जब वो निकले वो पहुंचे रामकेली, रामकेली में वो जैसे हम जानते हैं वो पहुंचे तो उनको श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मिले, और जब महाप्रभु वहाँ गए तो महाप्रभु जब जा रहे थे जिस गांव से जा रहे थे उस गांव के सारे लोग महाप्रभु के पीछे हुए थे, महाप्रभु का इतना आकर्षण था। दूसरे गांव में पहुँचते तो पिछले गांव के लोग प्लस इस गांव के लोग वो भी उनके पीछे, फिर तीसरे गांव में पहुँचते तो वो भी सारे, ऐसे करके लाखों लाखों लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के पीछे। रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी ने जब देखा तो उन्होंने महाप्रभु को अलग से रिक्वेस्ट किया कि महाप्रभु ये तरीका नहीं है वृंदावन जाने का, आप ऐसे जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, मुस्लिम गवर्नमेंट है तो वो नवाब कुछ गड़बड़ कर सकता है जब इतने लोगों को देखेगा। महाप्रभु ने कहा सही बात है, और महाप्रभु कनाई नटशाला तक गए और वहाँ से फिर वापस आ गए जगन्नाथपुरी और गदाधर पंडित से मिले, और गदाधर पंडित को बोला कि देखो मैं कैसे जा सकता हूँ वृंदावन, जब तुम दुखी हो जब तक तुम दुखी रहोगे तो मैं वृंदावन जा ही नहीं सकता, जब तक तुम खुश नहीं हो तब तक मैं वृंदावन नहीं जा पाऊंगा। तो गदाधर पंडित ने भी सुना तो उनको बहुत दुख लगा कि मेरे दुख की वजह से चैतन्य महाप्रभु नहीं जा पा रहे, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी आप चातुर्मास यहाँ करिए उसके बाद फिर आप वृंदावन चले जाना, तो फिर उनको परमिशन दे देते हैं वृंदावन जाने की। तो ऐसे ही जैसे हर बार रथ यात्रा होती थी जगन्नाथपुरी में, और सारे भक्त बंगाल से जगन्नाथपुरी आते थे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए, तो सब भक्त एक बार ऐसे ही आए और साथ में आए नित्यानंद प्रभु भी आए। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को भेज दिया था बंगाल जाओ प्रचार करो, तो नित्यानंद प्रभु भी सब भक्तों के साथ में आए। तो सब भक्त आते ही गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने, लेकिन नित्यानंद प्रभु नहीं गए। नित्यानंद प्रभु गए सीधा वो टोटा गोपीनाथ गदाधर पंडित के पास, और अपने साथ में लेके गए वो कुछ चावल। तो चावल उन्होंने गए और कुछ वस्त्र थे जो बहुत सुंदर सिल्क के वस्त्र थे उनके विग्रहों के लिए। जब गदाधर पंडित को वो दिए तो गदाधर पंडित बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि जो वस्त्र आप लाए हैं ये तो ऐसा नहीं लग रहा बंगाल से लाए, ऐसा लग रहा है आपकी वैकुंठ से खुद लेके आए हैं स्वयं। तो उन्होंने वो दिए उनको चावल। अब उनके पास कुछ था नहीं बनाने को कुछ, अब नित्यानंद प्रभु आए हैं तो वो बाहर कुछ सामान लेने भी नहीं जा सकते, कुछ शॉपिंग करने नहीं जा सकते कि और कोई है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उसी चावल को लिया, उसे कुक किया, साथ में वहाँ पे एक इमली का पेड़ था तो इमली के पत्ते लिए और उसको बनाया और कुछ शाक बनाया। तो बस यही कुछ प्रिपरेशन उन्होंने बनाया स्वयं और गोपीनाथ जी को भोग लगाया और फिर नित्यानंद प्रभु को सर्व किया। तो दोनों उन्होंने जैसे वो खाने बैठ रहे थे तभी वहाँ पे कौन आ गया, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए और वो लगे गदाधर तुम्हें क्या कर रहे हो, अकेले अकेले फीस खा रहे हो, मेरे को बुलाया भी नहीं। तो गदाधर पंडित का नहीं नहीं महाप्रभु फीस नहीं खा रहे तो खाली चावल और थोड़ा तो इमली का चटनी है। तो महाप्रभु का नहीं नहीं जब नित्यानंद प्रभु स्वयं जो चावल लेके आए हैं, गदाधर पंडित ने जो उसको कुक किया है, गोपीनाथ ने जिसको भोग किया है उसको, भगवान ने आस्वादन किया जिसका, वो साधारण कैसे हो सकता है, मैं जरूर खाऊंगा इसको, मैं भी इस पीस को पाट लूंगा। तो फिर सब नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित और महाप्रभु तीनों बैठ के उन्होंने उस प्रसाद का आस्वादन किया। तो हम सोच सकते हैं कैसा वो सीन होगा, तीनों बैठ के उस प्रसाद का आस्वादन कर रहे हैं। और वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कि जब ये ऐसा वो टेस्ट किया, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ऐसा जो चावल ऐसा जो प्रसाद मैंने आज तक कभी नहीं खाया, कभी टेस्ट नहीं किया। और वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो भक्त इस लीला का स्मरण श्रवण करता है वो भगवत धाम जाना उसका निश्चित है। तो ये बहुत सुंदर पाश्चात्य में श्री चैतन्य महाप्रभु का और गदाधर पंडित का। तो एक बार जब पुरी में सब भक्त आए हुए थे तो सभी भक्तों के साथ वल्लभ भट्ट वो भी आए हुए थे, और वल्लभ भट्ट ने एक श्रीमद् भागवतम के ऊपर कमेंट्री एक टीका लिखी थी। तो वो चाहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाना वो टीका, कि चैतन्य महाप्रभु सुने उसको, चेक करें उसको, अप्रिशिएट करें। तो महाप्रभु के पास लेके गए लेकिन महाप्रभु ने उसको ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि देखो हमारी मेरी जो टीका है वो श्रीधर स्वामी से भी ज़्यादा अच्छी टीका है मेरी, तो आप कृपया सुनिए इसको। बट चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो स्वामी को यानी कि श्रीधर स्वामी को जो स्वामी को नहीं मानता वो एक वैश्य है, वो वैश्य के समान है। तो ऐसा करके उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वल्लभ भट्ट के को, क्योंकि जो कमेंट्री है उसको नहीं सुना। जब बाकी भक्तों ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे रिजेक्ट कर दिया उसको, उनकी कमेंट्री को नहीं सुना, तो बाकी भक्त ने भी नहीं सुना और वो बहुत निराश हो गए वल्लभ भट्ट। लेकिन निराश होकर वो गए सीधा टोटा गोपीनाथ और वहाँ पे वो रहने लगे गदाधर पंडित के साथ, उनके साथ रहने लगे, उनके साथ उनके सेवा करने लगे। फिर कुछ समय बाद उन्होंने गदाधर पंडित को कहा, गदाधर पंडित को, कि मैंने एक टीका लिखी है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो गदाधर पंडित को पता है कि वल्लभ भट्ट को चैतन्य महाप्रभु ने उनकी कमेंट्री एक्सेप्ट नहीं करी है और उनको ये बोला है कि, तो उनको बहुत डर लगा कि मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेकिन वो क्योंकि इतने विनम्र स्वभाव के भी थे तो उनको बहुत वो भी लग रहा इनको कैसे मना करूँ, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं वल्लभ भट्ट, तो वो कन्फ्यूजन में हो गए। तो उन्होंने फिर ना चाहते हुए उन्होंने सुना, ठीक है आप बताइए सुने। लेकिन क्योंकि वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित का संग कर रहे थे, हालांकि वो वात्सल्य भाव में थे लेकिन उनका संग करने मात्र से उनका जो भाव था वात्सल्य भाव से माधुर्य भाव में परिवर्तित हो गया और उनको फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि उनका शुद्धिकरण हुआ, उन्होंने फिर डिसाइड किया कि मैं गदाधर पंडित से दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो गए गदाधर पंडित के पास और उनसे बोला कि मेरे को दीक्षा दीजिए। गदाधर पंडित ने कहा नहीं नहीं मैं चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो वल्लभ भट्ट गए चैतन्य महाप्रभु के पास, उनको उनके उनसे रिक्वेस्ट किया, गड़गड़ाएं लगे उनके पास और उनको क्षमा की याचना करने लगे उनसे कि मेरे को माफ़ कर दीजिए। तो महाप्रभु ने उनको माफ़ किया। वल्लभ भट्ट ने बोला कि ठीक है, आप मेरे घर पर आइए प्रसाद स्वीकार करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने सारे पार्षदों के साथ गए वल्लभ भट्ट के पास उनके घर पर प्रसाद स्वीकार करने के लिए। जब गदाधर पंडित ने उनसे सुना वल्लभ भट्ट से ये कमेंट्री, और जब महाप्रभु को पता लगा ये, तो महाप्रभु ने उसके बाद दो तीन बार जब कोई फीस्ट होती थी या कोई फेस्टिवल होता था तो गदाधर पंडित को आमंत्रण करना बंद कर दिया, ये दिखाने के लिए कि वो उनसे क्रोधित हैं। तो इस बार जब वल्लभ भट्ट ने उनको बुलाया तो महाप्रभु ने बोला सारंग भट्टाचार्य को, सॉरी स्वरूप दामोदर को, कि आप जाओ बुला के लाओ गदाधर को। तो जब बुलाने गए गदाधर को, गदाधर को पता लगा कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु बुला रहे हैं उनको, तो भाग के गए वहाँ पे और महाप्रभु के पैरों में पड़ गए, उनसे रिक्वेस्ट करने लगे, उनसे रोने लगे, उनसे क्षमा मांगने लगे। तो महाप्रभु ने उनको बोला कि नहीं नहीं, मैं तो खाली आपका टेस्ट ले रहा था, मैं एक्चुअली चाहता था कि आप अगर आपको मैं ऐसा स्थिति में डालूंगा तो आप क्रोधित होते हो कि नहीं होते। तो जैसे कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी का टेस्ट ले रहे थे द्वारका में, जब उनको बोलते हैं भगवान कृष्ण कि आपको मेरे से विवाह नहीं करना चाहिए था, मैं तो बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं हूँ, अलग अलग तर्क दे रहे हैं भगवान उनको, तो रुक्मिणी जी मूर्छित हो जाती हैं। भगवान चाह रहे थे कि ये क्रोधित हों, लेकिन रुक्मिणी जी का ऐसा स्वभाव था कि वो मूर्छित हो जाती हैं। तो वैसे गदाधर पंडित ने भी ये स्वभाव दिखाया कि वो क्रोधित नहीं हुए महाप्रभु के उस स्वभाव से, बट वो उनको बहुत दुख लगा। सो इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि पंडितेर भाव मुद्रा कहाँ नाना याया गदाधर प्राणनाथ नाम हैलयाया। कि पंडितेर भाव मुद्रा, कि कोई नहीं जान सकता, कोई भी व्यक्ति गदाधर पंडित के भाव भंगिमाओं तथा प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम गदाधर प्राणधन, गदाधर प्राणनाथ अर्थात गदाधर पंडित के प्राण है। पंडिते प्रभु प्रसाद कहाँ नाना आया गदाई गौरांग बाली यहाँ लोके गाया। कोई कह नहीं सकता कि महाप्रभु गदाधर पंडित पर कितने कृपालु हैं, किंतु लोग महाप्रभु को गौरांग गदाई गौरांग अर्थात गदाधर पंडित के गौरांग महाप्रभु के रूप में जानते हैं। तो ये है प्रेम गदाधर पंडित और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो इसमें हम देखते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे, हम जब नवदीप मंडल परिक्रमा करते हैं तो उसमें बहुत सारी जगहों पर जाते हैं जहाँ पे गौर और गदाधर के ड्यूटीज़ हैं, तो श्री भक्तिवीर ठाकुर भी गौर गदाधर ड्यूटीज़ को वर्शिप करते हैं और बताते हैं बहुत एग्जॉल्टेड और बहुत उच्च स्तर पे है वर्शिप गौर गदाधर की। हम चंपाहाटी जाते हैं जब, तो चंपाहाटी में गदाधर पंडित के ही जो भाई थे द्विज वाणीनाथ, तो उन्होंने इस ड्यूटीज़ को एस्टैब्लिश किया था गौर गदाधर के ड्यूटीज़ को। जब महाप्रभु नवदीप से जगन्नाथपुरी गए तो गदाधर पंडित उनके साथ चले गए और द्विज वाणीनाथ थे ये भी नवदीप में ही नहीं रहे, ये नवदीप से चंपाहाटी चले गए और वहाँ पे उन्होंने इस ड्यूटीज़ को एस्टैब्लिश किया। महाप्रभु भी वहाँ पे आए थे, उन्होंने भी दर्शन किए थे उस ड्यूटीज़ के। ऐसी स्वानंद सुखंद कुंज में भी देखते हैं हम भक्तिवीर ठाकुर ने ड्यूटीज़ का है गौर गदाधर के ड्यूटीज़। जब गदाधर पंडित हालांकि खाली 48 ईयर्स के थे लेकिन महाप्रभु समय अपनी लीला समाप्त कर चुके थे इस धराधाम पे, तो क्योंकि महाप्रभु के विरह में इतना ज़्यादा वो दुखी थे गदाधर पंडित कि वो एकदम कमज़ोर हो गए थे और एकदम उनके शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं रह गई थी उस विरह के कारण, महाप्रभु के विरह के कारण, और इतना वो कमज़ोर हो गए थे, इतने वो वृद्ध हो गए थे कि वो अपने हाथ को पूरा स्ट्रेच नहीं कर पाते थे टोटा गोपीनाथ को एक हार पहनाने के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं गोपीनाथ जी की सेवा है, अब मैं और नहीं कर पाऊँगा, अब मुझे किसी को नियुक्त करना पड़ेगा, किसी और को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, वो इस गोपीनाथ जी की सेवा करेगा। जब उन्होंने ऐसा सोचा तो उनके स्वप्न में स्वयं गोपीनाथ जी आए और उन्होंने बोला कि मैं किसी और से सेवा स्वीकार नहीं करने वाला, मैं तो आपसे ही सेवा स्वीकार करूँगा। और क्या हुआ, अगले दिन जब उन्होंने प्रयास किया उनको हार पहनाने का तो गोपीनाथ जी स्वयं बैठ गए। तो ये एकमात्र विग्रह हैं भगवान कृष्ण के जो बैठे हुए हैं। हम अभी जाते हैं जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ में तो हम देखते हैं बहुत सुंदर डीडीज़ हैं गोपीनाथ जी के वहाँ पे। और उन गोपीनाथ जी के डीडीज़ में एक बहुत स्पेशलिटी है, श्री चैतन्य महाप्रभु बताया जाता है जब उन्होंने अपनी लीला समाप्त करी तो महाप्रभु उस टोटा गोपीनाथ के विग्रह में ही प्रवेश किया महाप्रभु ने, महाप्रभु के उसी टोटा गोपीनाथ विग्रह में अगर हम जाएं, अगर आप वहाँ पे जाएं और मंगल आरती दर्शन करें और पुजारी जी से रिक्वेस्ट करें वहाँ पे टोटा गोपीनाथ मंदिर में, तो आपको वो चिन्ह दिखाएंगे गोपीनाथ जी के नी के अंदर, जहाँ पे अभी भी वो क्रैक है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करे थे उस विग्रह में। तो हमने ऐसा फॉर्चून हुआ कि हम सब डिवोटीज गए थे वहाँ, हमने दर्शन करे बहुत सुंदर उन डिटीज के और उस स्थान के जहाँ पे महाप्रभु प्रवेश किए थे। और कुछ शास्त्रों में ऐसे अथॉरिटीज बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि गदाधर पंडित भी उन्होंने भी अपनी नित्य लीला उसी तरह समाप्त करी, वो भी उसी टोटा गोपीनाथ के विग्रह में ही उन्होंने प्रवेश किया। सो बहुत स्पेशल डे है आज का, गदाधर पंडित का आविर्भाव दिवस, बहुत स्पेशल मौका है हमारे पास गदाधर पंडित को स्मरण करने का, उनसे प्रार्थना करने का कि जो उनका प्रगाढ़ प्रेम था श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति, उसका कुछ लेश मात्र हमारे ऊपर कृपा करें कि हम भी उसको कुछ लेश मात्र अर्जित कर सकें। उनकी जो रुचि है श्रीमद् भागवतम पढ़ने में, उनका जो प्रेम है श्रीमद् भागवतम से, हम भी उसका कुछ लेश मात्र हम ग्रहण कर सकें और हम भी कुछ टेस्ट डेवलप कर सकें उस श्रीमद् भागवतम को हम स्टडी करने में, भागवतम को पढ़ने में, और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण। श्री गदाधर पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव।